समझाने के लिए बताया उन्होंने। तो एक ही साथ में बहुत सारे विषय बोल दिए तो क्या हो जाता है, तो मन भ्रमित हो जाता है। तो वैसे ही अर्जुन भी भ्रमित हो गए। फिर से उनको अच्छी तरीके से बताने के लिए उन्होंने पूछा, और इसके उत्तर में भगवान अभी एक एक करके अलग से वर्णन करना शुरू कर दिए। पहले अभी कर्मयोग का वो वर्णन करते हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय के सार को प्रभुपाद वर्णन करते पहले वहां पर बोलते तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण बाणा भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। पहले तात्पर्य के अंत में देखिए आप, तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में भी भगवान प्रभुपाद वर्णन करते हैं, भगवद्गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। वो अंत में बोलते हैं इसको, कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसंभव। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपना नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत ही अपने नियत कर्मों को बंद करने की जरूरत नहीं है। जो हमें कर्म बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे जो कर्म बताए गए उनको तुरंत ही बंद करने का जरूरत नहीं है। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो इसको इनडायरेक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो वर्णाश्रम को पालन करते हुए कृष्ण को केंद्र में रखते हुए वर्णाश्रम का पालन कर, उसी को कर्मयोग भी कहते हैं, है कि नहीं। वर्णाश्रम क्या होता है, गुण कर्म विभाग, गुण के अनुसार कर्म दिए जाते हैं, उसको ये नियत कर्म कहते हैं। शास्त्र हमें धर्मशास्त्र नियम देते हैं या हमारे अलग अलग कर्म बताते हैं क्या करना चाहिए तुमको, तो उसके अनुसार ही उसको ही नियत कर्म कहते हैं। उन नियत कर्मों को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो उसको धीरे धीरे उसको करते करते भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए शुद्ध कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने वो चर्चा किया सीढ़ी को, है ना। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों का अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो इसके अनुसार ज्ञान और योग जो है वो कृत्रिम हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के लिए कार्य नहीं है। तो इंद्रियों को नियंत्रण कृत्रिम रूप से वो लोग नियंत्रित करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसलिए खतरनाक हो सकता है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको ही बुद्धि योग पिछले अध्याय में कहा गया। तो और इस अध्याय में ये सब विभाग किए गए। अर्जुन ने कृष्ण से, पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कर्म या ज्ञान निश्चित निश्चित पूर्वक बताइए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अंतिम श्लोक के तात्पर्य में कि कर्म एक तरफ कर्म और भक्ति बोलते हैं, दूसरी तरफ ज्ञान और अष्टांग योग, मतलब वो दोनों क्या है, वो इनएक्टिव प्रोसेस है। इनएक्टिव जानते हैं ना, निष्क्रिय कार्य होते हैं, निष्क्रिय मार्ग है वो। और दूसरा क्या है, एक तरफ ज्ञान कर्म योग है और भक्ति योग है, वो सक्रिय कार्य यू नो मार्ग है, एक्टिव पाथ। तो अर्जुन वास्तव में क्या पूछ रहे थे, इन दोनों के बीच में कौन सा हमें मुझे स्वीकार करना चाहिए वो बताइए। वो सन्यासी बन के वन में प्रवेश, युद्ध नहीं कर त्याग करके वन में प्रवेश करना चाहते, निष्क्रिय कार्य मार्ग को वो स्वीकार करना चाहते। हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा ना, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। उस तात्पर्य में वो प्रभुपाद वर्णन करता है कि वो वन में जा प्रवेश करके ऐसे ही वॉन्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे बोलते निष्क्रिय मार्ग को वो स्वीकार करना चाहते। तो समझ में आ गया, वो चार हम लोग अलग अलग योग को, योग पद्धति को चर्चा किया था हम लोगों ने। उसमें दो क्या है, वो सक्रिय मार्ग में आते हैं, दो निष्क्रिय मार्ग में आते हैं। तो सक्रिय मार्ग मतलब वो क्रिया में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, निष्क्रिय मार्ग में क्या करना चाहिए, संन्यास लेके निष्क्रिय एक ऐसे निर्जन स्थान में रह के तो ब्रह्म से अपने आप को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं लोग। तो इन दोनों में से मुझे कौन चुनना चाहिए, ऐसे उनका प्रश्न था। तो भगवान कर्म योग नियत कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आपको मेरे प्रसन्नता के लिए तो आप कर्म करो, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, सक्रिय मार्ग को आप स्वीकार करो, यज्ञ का सिद्धांत। इसके बाद में ये दो दूसरा विभाग नवे श्लोक में खत्म हो जाता है, यज्ञातात् कर्म न अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यज्ञ के लिए कर्म करने से, यज्ञ मतलब अल्टीमेटली भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करने से, उसका अर्थ है वर्णाश्रम के केंद्र कौन होना चाहिए, भगवान कृष्ण होना चाहिए, इसको ही दैव वर्णाश्रम भी कहते हैं। ऐसे करने से एक व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी को कर्मयोग भी कहते हैं, वही कर्मयोग है। फिर भक्ति योग और कर्मयोग में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न उठ सकता है ना, ठीक है ना। अंतर इतना ही है कि कर्मयोग में व्यक्ति अभी भी कर्म से आसक्त रहता है, मतलब अपने स्वभाव उसके ऊपर भौतिक प्रभाव स्वभाव जो है बहुत जोर रहता है ना, मैं यही सेवा करूंगा ऐसे, मतलब उसको बहुत यही सेवा मुझे अच्छा लगता है इसके ना, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन भक्ति में कैसे नहीं होता है, जो भी डिमांड किया जाता है वो तक करने के लिए भगवान जो भी इच्छाते हैं वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो कर्मयोग में यू वर्क एंड देन सरेंडर, एंड भक्ति योग में यू सरेंडर एंड देन वर्क एंड ऑफर द रिजल्ट्स आल्सो टू कृष्ण। तो ये अलग, पहले कर्मयोग में पहले काम करते हैं हम लोग, कर्म करते हैं, बाद में हम लोग शरणागत होते हैं, मतलब हमारे फल को भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन भक्ति योग में पहले शरण में जाते हैं भगवान का, फिर बाद में कर्म करते हैं, जो भगवान चाहते हैं वही कर्म करते हैं और उस फल को भी भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर यज्ञात अपना कर्म करो, कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको यज्ञार्थात मेरे लिए करो प्रसन्नता के। फिर उसके बाद में यज्ञ क्या होता है उसको वर्णन करते हैं, क्या है, कौन इसको बनाया, कौन दिया उसको, कैसे किया जाता है उसको, वो यहाँ पर वरुण कहते सायज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित कैसे वो यज्ञ किया जाता है उसको भी यज्ञ का चक्र को यहाँ पर वर्णन करते हैं साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। और उसके बाद में स्वरूप सिद्ध ट्रांसेंडेंटल पोजिशन मीन्स व्हाट दिव्य स्तर पर जो रहते हैं स्वरूप सिद्ध इज टू मच इज टू हाई दिव्य चेतना में जो रहते हैं या दिव्य स्तर पर जो रहते हैं व्यक्ति के लिए कोई भी कठिन नहीं है उसको बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। दिव्य स्तर पर स्थित या दिव्य चेतना में रहे व्यक्ति दिव्य चेतना में ऐसे व्यक्ति अच्छा रहे क्योंकि दिव्य स्तर भी वो भी ज्यादा हो जाता है। दिव्य चेतना युक्त व्यक्ति के लिए चेतना युक्त यस्यात्मरतिरेवस्यावात्मतृप्तश्चमानवात्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। सो 17वें श्लोक तस्य कार्यं न विद्यते उसके लिए कोई कर्म नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कर्म करते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्धं वर्तते। और यहाँ पर भगवान अपने बारे में बोलते हैं मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है इस दुनिया में क्योंकि मेरा कुछ प्राप्त करने का यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ दूसरों को मैं नहीं करूँगा तो दुनिया पूरा नष्ट हो जाएगा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वर्णन आता है फिर अपने नियत कर्म करना श्रेयस्कर है। तो नियत कर्म को जीव चेतना में करना चाहिए और अपने कर्म को करना अच्छा है। वो 35वां श्लोक में कहते हैं ना श्रेयान स्वधर्मो विघ्ना परो धर्म भया भया स्वधर्मो व्हाट इज दैट स्वधर्मो
श्रेष्ठ
बोल दिया श्रेयान स्वधर्मो विघ्ना परोधर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परोधर्म भया भया इसलिए अपने नियत कर्म करो ऐसे कहते। और नियत कर्म करते करते उसके बाद में अर्जुन कहते हाँ मैं करता करना चाहता हूँ लेकिन कुछ चीज़ मुझे बाध्य करता है पाप करने के लिए पाप करना सकाम कर्म करने के लिए या पाप पाप के कार्य करने के लिए तो वो क्या चीज़ है। तो वो भगवान बोलते काम येषु क्रोध येषु रजोगुण समुद्भव महाशम महापापमा विद्येनम ये वेदिना। ये जीव का शाश्वत शत्रु है जिसके कारण जीव जो करना चाहिए वो नहीं करता है जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो इससे बच के रहो ऐसे वो कहते हैं। तो ये सब चीज इस अध्याय में वर्णन किए गए हैं। तो पहला श्लोक अर्जुन उवाच ध्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्जन किं कर्मणि घोरे मां शिकेशव। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो पिछले अध्याय के 29वां श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक भगवान ये सकाम कर्म को खंडन किए है ना, यामिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यति तरिष्यति वगैरह। तो वो वेदवाद, ये सकाम कर्म को करने वाले कौन है, वेदवाद रहता है वो क्या है, विपश्चित है, अविपश्चित है और कामात्मना है और भोगेश्वर में हमेशा लिप्त रहते हैं वो लोग, और ये मोह का घना जंगल में हमेशा डूबे रहते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। और बुद्धि योग का गुणगान करते हैं वो, है ना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई हानि नहीं है, इसका घटन कभी होता नहीं है, जो भी जितना भी प्राप्त किया हमेशा आपके साथ रहेगा, इससे व्यवसायात्मिक बुद्धि को प्राप्त करोगे, ऐसे उन्होंने उसका गुणगान किया। तो लेकिन अर्जुन बुद्धि योग को पूरी तरह से गलत समझ लिया, बुद्धि योग को उन्होंने क्या समझ लिया, ये निष्क्रिय मार्ग समझ लिया उसको, संन्यास लेकर मनन चिंतन मनन करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करके क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, ऐसे उन्होंने एक निष्क्रिय मार्ग को ऐसे सोचा उन्होंने। तो ये उनका गलती था, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, एक सक्रिय है ना, एक्टिव पार्ट वहाँ पर। तो आत्मा के ज्ञान के आधार पर और भगवान के ज्ञान के आधार, ज्ञान संबंध ज्ञान जो है उसके आधार पर उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए योग मतलब बुद्धि योग, योग मतलब भगवान को जोड़ना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप ये युद्ध करो, वो भगवान ने संदेश दिया था। लेकिन अर्जुन पूरी तरह से गलत समझ लिया, बुद्धि का अर्थ उन्होंने क्या समझ लिया, एक निष्क्रिय मार्ग ऐसे समझ लिया उन्होंने। तो और प्रभुपाद इस तात्पर्य में वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसे हम लोग इस भगवान निष्क्रिय मार्ग को बता रहे हैं तो वो गलत समझ के प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, स्किलफुली ही वांटेड टू अवॉइड फाइटिंग, क्या बोलते हैं उसको, चतुराई से तो वो युद्ध करना त्यागना चाहते थे। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, चतुराई से कुछ बोल के सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, चतुराई से सेवा को नकारना चाहते हैं, ऐसे ही अर्जुन भी चतुराई से उन्होंने क्या किया, बुद्धि योग के नाम से तो युद्ध करना त्यागना चाहते थे, तो ये उनका समस्या था। तो उनका समस्या था। और प्रभुपाद देवी कहते हैं कभी कभी लोग इस बुद्धि योग को गलत समझ के या कृष्ण मानामृत को गलत समझ के इस निष्क्रिय कार्य करके, क्योंकि बौद्धिक जगत में सभी ना पारिवारिक जीवन या विश्वविद्यालय में अध्ययन करना या ऐसे कंपनी में काम करना वो बहुत तकलीफदायी होता है, ये कृष्ण मानामृत अच्छा चीज़ है करके वो लोग निष्क्रिय चीज़ है कुछ चिंता नहीं करके ऐसे वो लोग अपने चीज़ों को त्यागना चाहते, त्याग के ठीक है गलती नहीं, वो समझना चाहिए कि वो बहुत दुख का स्थान है, सब बौद्धिक जगत बौद्धिक समाज दुख का स्थान है, जंजाल है, वो समझना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण बाणामृत कोई निष्क्रिय कार्य नहीं, इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, केयर फ्री लाइफ ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी का जीवन है कृष्ण बाणामृत भी, ऐसे केयर फ्री आश्रम में रह के कोई चिंता नहीं है कुछ काम नहीं है, ऐसे खाते पीते सोते रहो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन करो बीच बीच में ऐसा नहीं है, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। तो या कभी कभी ऐसे होता है हम लोग निष्क्रिय एक निर्जन स्थान में जाके हम लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेंगे, तो ऐसे कहते हैं वो लोग निर्जन भजन, वो प्रसिद्ध है ना निर्जन भजन, हाँ निर्जन भजन है, वो भी है, हमारे आचार्य भी किया है, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत प्रचार किया, बहुत सारे ग्रंथ लेके आया, अंत में वो भी निर्जन भजन किया उन्होंने भी। और प्रभुपाद जी भी बार बार कहा करते थे, अभी ये आध्यात्मिक गुरु को आपको क्या, आप आंदोलन को संभाल, शिष्य लोग आंदोलन को संभालना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु को क्या करने देना चाहिए, निवृत्ति दे देना चाहिए, तो ऐसे वो प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो वो भी बताया गया, लेकिन परिपक्व हुए बिना उसमें जाना क्या है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको विश्लेषण करते हुए वो गीत रचना किया ना, वैष्णव के दुष्ट मना तुम्हें किसे रह वैष्णव, तो प्रतिष्ठा रे थरे निर्जन रे गरे तवा हरि नाम केवल कहित हो, ऐसा बोलते व्हाट काइंड ऑफ ए वैष्णव यू आर, यू आर अ दुष्ट, यू आर अ विकर्ड मैन, मन वो ऐसे मन को तुलना करते हुए उनको निंदा कर रहे हैं, जो लोग उनको डांट रहे हैं, जो लोग परिपक्व हुए बिना निर्जन भजन करने के लिए जाते हैं, तुम लोग विकड़, तुम्हारा मन क्या है विकड़, इट इज दुष्ट है, सिर्फ प्रतिष्ठा के आशा से मैं बहुत बड़ा बाबा जी हूँ, सिर्फ कोपिन पहना हूँ, ऐसे करके सबको दिखाने के लिए। उस समय पर ये बाबा जी संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध था ना, अभी भी पाएंगे आप लोग वृंदावन और राधा कुंड वगैरह। तो तवा हरि नाम केवल कहितो, तुम्हारा जो जप करना है, कीर्तन करना है, नाम कीर्तन करना क्या है, सिर्फ कहितव है, चीटिंग है, कहितव धर्म। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद लेक्चर में बताते थे कि अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे बाबा जी उनको देखते हैं वृंदावन में, वो लोग निर्जन स्थान में जाते हैं, लेकिन बूढ़ी बीड़ी फूंकना नहीं त्याग सकते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या फायदा है ऐसे निर्जन जन, तो इसलिए हमें सक्रिय होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद दवा वो कहते थे, एक बार कहा उन्होंने, अभी यू आर ऑल यंग, अभी यू वर्क हार्ड एंड इन ओल्ड एज गो टू मायापुर एंड चैंट हरे कृष्ण, एज पर एज आई एम कंसर्न आई एम स्टिल यंग, वैसे अभी वो 80 साल के थे, 80 साल के थे तब ये बोल रहे थे, 80 नज़दीक 80 के नज़दीक थे। आप लोग अभी युवा हो, बहुत मेहनत करो और जीवन के अंत में क्या करो, मायापुर में जाओ और हरिनाम करो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिस हद तक मेरे बात है, मैं अभी भी युवा हूँ, ऐसे बोलते थे। और प्रभुपाद आई भी बोलते थे, आई वॉन्ट अ बेनेडिक्शन टू फाइट लाइक अर्जुन टिल माई लास्ट ब्रेथ, मेरे अंतिम श्वास तक अर्जुन के जैसे युद्ध करने के लिए मेरे मुझे स्वा मतलब मुझे वर चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे श्री प्रभुपाद। तो हम लोगों के लिए प्रचार एक ये पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना या आंदोलन चलाना, ये एक शुद्धिकरण के प्रक्रिया के रूप में हमें आचार्य दिए हैं, तो यही हमारा निर्जन भजन है, ठीक है। तो और भक्तों के लिए निर्जन क्या है, अभक्तों से दूर रहना वही निर्जन है, भक्तों के संग में रहना निर्जन, जना मतलब जो अभक्त है उनसे दूर रहना वही निर्जन। तो जल्दी 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 सर,
श्री भगवान कृष्ण पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्कृति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना मृत। कभी कभी कृष्ण भावना मृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी ध्यान धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जब द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं, इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सके। अर्जुन को भी कृष्ण भावना में या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वे सक्रिय जीवन से संन्यास के एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावना में का बहाना वे कृष्ण भावना में को बहाना बना के चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने इसी अध्याय में कर्मयोग अर्थात
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि ममे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आत्मया। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरे बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। व्यामिश्रेयेनैव वाक्येन, एक जो वाक्य जो अनेक अर्थ देता है, जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे बुद्धि योग मतलब सभी को बुद्धि योग कहते हैं, है ना, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग और भक्ति योग सबके लिए बुद्धि योग, है ना, ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं एक शब्द का या एक वाक्य का। ऐसे वाक्य बोलकर मेरा बुद्धि को मोहित कर दिया आपने, ऐसे कहते हैं मोहयसि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो योऽयम् आत्मयम्। लेकिन आए निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। ऐसे कब पूछा था अर्जुन ने फिर पहले, किसी को पता है कब पूछे थे अर्जुन ने? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव कृष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यशेष निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान धर्म त्वां प्रपन्नम्। तो दूसरे अध्याय के आरंभ में उन्होंने प्रश्न ऐसे अर्जुन भगवान से कहा था, अभी मैं आपके शिष्य हूँ, अभी आप निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है। पहले उन्होंने श्रेय को गलत समझ लिया, मेरे लिए श्रेयस्कर है ये युद्ध मुझे श्रेय नहीं प्राप्त करेगा, पहले अध्याय के 31वें श्लोक में वो जो श्रेय समझ रहे थे वो वास्तविक श्रेय नहीं है। और दूसरे अध्याय क्या वो शरणागत होने से पहले भी उन्होंने सोचा मुझे श्रेय भीख मांग के रहना ही श्रेयस्कर होगा, इससे कि ऐसे महाजनों को मैं युद्ध में मारूं। और उसके बाद में क्योंकि वो अंत में कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो फिर भगवान से श्रेय मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है निश्चित रूप से अब ये श्रेयशान निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम शादी मान दो। और यहाँ पर फिर से वही पूछ रहे निश्चित्य ये न श्रेयो यम आपनुयाम, तो फिर से वही पूछ रहे, मतलब इसका अर्थ जो भी दूसरे अध्याय में उन्होंने सुना उसका कुछ समझ में ही नहीं आया उनको, है कि ना, क्योंकि वही फिर से पूछ रहे, मतलब है कि ना, कभी कभी ऐसे होता है ना, वो उसका उत्तर ऑलरेडी प्रवचन में बताया जाता है फिर भी वही प्रश्न पूछते हैं लोग, कभी कभी ऐसे भी वो प्रभुपाद वो ऐसे भी वो क्या किया करते थे एक जोक बताया करते थे रामायण सुना अंत में क्या है सीता राम के लिए क्या संबंध है उसका ऐसा पूछा, ऐसा ऐसा भी होता है। तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो वो किस लिए समझ में नहीं आया उनको, हम लोगों को तो समझ में आया बुद्धि योग क्या है करके, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास भक्ति वेदांत तात्पर्य थे, उनके पास भक्ति वेदांत तात्पर्य नहीं थे तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया। एक्चुअली अर्जुन को भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी वो कृष्ण हमारे पहले पूछ रहे हैं, हम कहते हैं तो भक्ति वेदांत तात्पर्य है हम समझ ले, लेकिन फिर भी भगवद्गीता का जो निष्कर्ष है पूर्ण शरणागति भगवान के लिए, उस स्तर तक तो हम लोग नहीं आए अभी तक, है ना। उसके लिए और सुनने का जरूरत है, और सुनने का, और सुनने का जरूरत है। जब तक वो होता नहीं, अंतिम जो फल जो मिलता नहीं भगवद्गीता का, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना। हाँ, एक महीने में भगवद्गीता सुन लिया खत्म नहीं होता। जब तक करिष्ये वचनम थवा, मैं आप जो कह रहे हैं वो करूँगा, उस स्तर तक हमें सुनना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। इसलिए ये फिर से यहाँ पर दोहराया जा रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद लक्षर में कहते हैं कि जब कभी कभी ऐसे होता है कि व्यामिष्ठी ने वो वाक्य ना, वो स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? कंफ्यूज हो गए तो क्या करते हैं? कंफ्यूज हो गए तो फिर से प्रश्न पूछना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हमें फिर से गुरु को पूछना चाहिए। जो तात्पर्य के अंतिम जो वाक्य है, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से, उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पर बोल रहे हैं।
अध्याय में भगवद्गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह,
कंटेंट्स, उपक्रम मतलब कंटेंट्स के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग,
काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने और समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी।
तो ये इस अध्याय के लिए, इसके बाद के जो अध्याय है बहुत ही व्यवस्थित रूप से भगवान वर्णन करने वाले, तो इस अध्याय में विशेष करके वो कर्म योग के बारे में वर्णन करेंगे। बाद में ऐसे 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 अलग अलग अन्य विषयों को भी फिर से वर्णन करेंगे जो उन्होंने दूसरे अध्याय में वर्णन किया।
अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना क्या है, डरता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वे उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावना में मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मया नगा ज्ञानयोगेन संज्ञानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। लोकेश्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानगा, पहले मैंने बताया था, पुरा प्रोक्ता मयानगा निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले बताया था दो प्रकार के निष्ठा होते हैं इस जगत में, दो प्रकार के मार्ग होते हैं। वो कौन से है? ज्ञान योगेन संख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो ज्ञान योगेन संख्यानाम वो एक मार्ग है, और दूसरा मार्ग क्या है? कर्म योगेन योगिनाम। वन रिचुअलिस्टिक पाथ, अनदर इज फिलोसॉफिकल पाथ। वन एक्टिव पाथ, अनदर इज इनएक्टिव पाथ। समझ में आ गए? दो मार्ग कौन कौन से होते हैं? एक ऐसे अनुष्ठानों के जो मार्ग होता है, दूसरा क्या होता है? दार्शनिक मार्ग होता है। ऐसे दो मार्ग होते हैं। कुछ लोग अनुष्ठान में रुचि रखते हैं, कुछ लोग दर्शन में रुचि रखते हैं। कर्म योग या भक्ति योग क्या होता है? अनुष्ठान का मार्ग होता है। वास्तव में भक्ति योग सिर्फ अनुष्ठान का नहीं है, लेकिन कर्म योग सांख्या नाम, सांख्य का यहाँ पर क्या अर्थ है? हम लोगों ने चर्चा की है ना, अलग अलग सांख्य होते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान, जो भगवान ने पहले वर्णन किया है यहाँ पर, पूरा प्रोक्ता मतलब पहले वर्णन किया, मतलब 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया दार्शनिक दृष्टिकोण से, तो वो मार्ग ये दोनों होते हैं। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। भगवद गीता में ये दोनों को मिलाकर बताया गया है। या भक्ति मार्ग क्या है? वो रिलीजन विदाउट, प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यहाँ पर? दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है ना। तो जैसे सभी फैनेटिसिज्म चलता है ना धर्म के नाम पर, हिंदुत्व, इस्लाम, जिहाद, अभी यू नो इस्लाम स्टेट IS बहुत प्रचलित चल रहा है आजकल, है ना। वो लोग इस्लाम जिहाद, या वो लोग बोलते हैं ईसाई लोग भी बोलते हैं ना, तो आप ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो शाश्वत रूप से नरक में सड़ोगे ऐसे लोग। और उनमें से भी अलग अलग विभाजन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक बोलता है तुम कैथोलिसिज्म नहीं लोगे तो शाश्वत रूप से, और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं शाश्वत रूप से, और उनको मार के मुक्त करते हैं। अच्छा है कि तुम्हें मैं मार दूँ, हत्या कर दूँ, ताकि नरक जाने से बच जाओगे ऐसे। तो ये भयानक भयानक धर्म है ना, है ना। तो पहले वैदिक भारत में ऐसे नहीं होता था, आजकल ये भी हिंदुत्व के नाम पर ये लोग कर रहा है आजकल। पहले युद्ध होते थे लेकिन दार्शनिक युद्ध होते थे, फिलोसॉफिकल वार्स, डिबेट। तो भारत का इतिहास इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, है ना। तो एक दूसरों को काटना वाटना ये सब पाश्चात्य देश से आया है। ऐसे तमोगुणी क्या है? धर्म के प्रभाव से प्रकट हुए। तो ये धर्मांधता कहते हैं, भावुकता या धर्मांधता। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। आधुनिक जमाने में जो बहुत सारे लोग हैं जो वेदों को, भगवद गीता को वगैरह अध्ययन करते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स होते हैं ना उनको, तो विश्वविद्यालय में बहुत सारा शास्त्रज्ञ होते हैं, वो लोग अध्ययन करता है, एक हाथ में वो बीर का बॉटल रहता है और दूसरे हाथ में भगवद गीता कर लेते रहते हैं, या कभी कभी सिगरेट भी फूंकते रहते हैं। तो धर्म के बिना क्या है वो? तो वो सिर्फ मनोधर्म, मानसिक ऊहापोह है, तो वो नहीं होने वाला। तो भगवद गीता में इन दोनों को मिलाकर बताया। तो भगवान सभी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म का जो दर्शन है वो वर्णन करते हैं, और भक्ति का निष्कर्ष देते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्करो मामेश्वर शिशि युक्तम आत्मान मत्परायण। तो इन दोनों के मिलाकर भगवान वर्णन करते हैं। लेकिन सामान्यतः लोग कोई ऐसे दार्शनिक होना चाहते हैं, कोई ऐसे बहुत सारा पूजा यज्ञ वगैरह करना चाहते हैं, तो लोग अलग अलग ऐसे इस जगत में होते हैं लोग। तो इन दोनों के बारे में भगवान पिछले अध्याय में बताया। तो पढ़िए।
अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की प्रतिज्ञा का
उल्लेख किया था, लेकिन कहां पर बताया था उनको? उससे पहले सांख्य को 11 से लेकर 30 तक बताया था, और उसके बाद में 40 से लेकर ये बुद्धि योग के बारे में वर्णन किया। या सांख्य
योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग, इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई थी। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान और दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना में अपना कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 49वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना मन के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है और इस पंक्ति में कोई दोष नहीं है।
ये शाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योग त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी।
श्लोक में इसी सिद्धांत की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है।
यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित नहीं स्थानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः मत्परः, मतलब वो सिर्फ कर्म योग नहीं है, वो भक्ति योग है, उसको ज्यादा और स्पष्ट करके।
सत्रहवें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म विशेष कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म और दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता ये कभी कभी धर्मांत होता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक।
सो समझ में आ गया ना, एक दूसरों के ऊपर कैसे निर्भर है। एक्चुअली हमें आत्मा के ज्ञान के बिना हम लोग भक्ति को भी कैसे स्वीकार करेंगे, है कि ना? तो इसलिए हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी। तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे कि वो चैतन्य चरितामृत में वो श्लोक आता है, चैतन्य र कृपा करह विचार। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसके ऊपर विचार करो, ऐसे ब्लाइंडली उसको स्वीकार मत करो। आप उसको तार्किक दृष्टिकोण से उसको समझो, ऐसे बताएगा। और भक्ति भी क्या है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। भक्ति भी क्या है, ये श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र ये सभी शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर है, उसके ज्ञान पर आधारित नहीं है तो उत्पात एव कल्पते कहते। और क्या है, भक्त्या श्रुति ग्रहितया, दूसरे स्कंद पहले एक स्कंद में दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, भक्ति श्रुति शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। तो ये सब चीज वर्णन आता है, दोनों ज्ञान और जो अनुष्ठानों का जो मार्ग है दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। या
अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण महामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना में तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना में प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना में का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावना में स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल नित्य है।
न कर्मणावनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न च सन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अभी न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये ज्ञान मार्ग में सांख्य, ज्ञान, त्याग, वैराग्य और क्या है, संन्यास, ये सब चीज़ आते हैं, बहुत सारा चीज़। वो एक ही छाता के समान है। तो यहाँ पर इसलिए संन्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते। कोई बोलते हैं मुझे कर्म करना है, तो फिर उसका फल भी आ जाते हैं कर्म करने से। अच्छा है कि कर्म शुरू ही नहीं करूँ मैं। निष्कर्म मतलब क्या होता है, कर्म फल से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति को निष्कर्म कहते हैं। न कर्मणाम अनारंभम, सिर्फ उसको आरंभ करने से ही, आरंभ न करने से ही निष्कर्म प्राप्त नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं प्राप्त होता है, कर्म बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त होता है। तो कोई ऐसे कह सकते ना, मैं कुछ कर्म नहीं करूँगा। कर्म करने से एक्शन और रिएक्शन होता है, कर्म फल आता है, तो अच्छा है कि कुछ मत करो, ऐसे बेटर रहो शांति से। जनरली ज्ञान योगी या अष्टांग योगी वही करते हैं ना, कुछ कर्म नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। लेकिन कर्म न करने से भी निष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान बोल रहे। वो ऐसे बैठने से भी आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा, है ना। इस जगत में कोई भी रिएक्शन से बच नहीं सकता। न च संन्यास अनेदेगा सिद्धि समधिगच्छति। संन्यास स्वीकार करने से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरे भाग में